नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर प्रदेश के नगर निकायों में भी आज हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। राज्य के प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मी होने पर नहीं कराना होगा निबंधन। राज्य सरकार ने बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्त अधिनियम समाप्त किया। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में उमस भरी गर्मी का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शेखपुरा जिले के बरबीघा में विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, साथ ही आमस पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री शेखपुरा में 53 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सामस स्थित विष्णु धाम के सौंदर्यीकरण की योजना के साथ अन्य योजना इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है कि मुख्यमंत्री पटना से यहां पहुंचते ही पहले सामस स्थित विष्णु धाम में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद सहयोग शिविर में शामिल होकर वहां मौजूद लोगों से सहयोग शिविर के बारे में फीडबैक प्राप्त करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार।
मुख्यमंत्री आज मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत परसौनी नाथ पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में आज से सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। राज्य की पंचायतों में भी सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। सहयोग शिविर से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में उद्योगों, निवेशकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों को विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करने में जटिलताएं दूर की जाएंगी। पटना में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को लाइसेंस निर्गत करने, अनुमति प्रदान करने और प्रक्रियाओं को सरल तथा आसान बनाने का निर्देश दिया है। श्री चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक उनके खाते में राशि भेजने को सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि संगठन पार्टी की शक्ति है और उसी के जरिए सरकार की उपलब्धियां और विचारधारा को जन जन तक ले जाना है। इसके तहत महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्त अधिनियम को समाप्त कर दिया है। अब दुकान और प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मी होने पर दुकानदारों को निबंधन नहीं कराना होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन की सहमति के बाद इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना के अनुसार अब नए लेबर कोड में 10 और इससे अधिक कर्मी रखने पर ही दुकानदारों को निबंधन कराना होगा। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नियमों का अनुपालन करते हुए सरकारी आवास खाली करना होगा। श्रीमती सिंह ने पटना में जदयू कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राबड़ी देवी वरिष्ठ नेत्री हैं, इसलिए उन्हें भी नियमों का सम्मान करना चाहिए। श्रीमती सिंह ने कहा कि सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई प्रतिशोध और द्वेष की भावना से नहीं की जा रही है। राजद के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुरक्षा कारणों से आवास दिया गया है। इधर राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार यदि द्वेषपूर्ण राजनीति करेगी तो राजद के सभी नेता सरकारी आवास और सुरक्षा वापस कर देंगे। बेगूसराय की एमपी एमएलए अदालत ने केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में जमानत दे दी है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। पटना के बिहटा स्थित इरेडिएशन सेंटर और इनलैंड कंटेनर डिपो के निरीक्षण के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री सिंह ने कहा कि सरकार प्रदेश में आधुनिक औद्योगिक और कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
सिर्फ जरदालू आम ही नहीं, मखाना के उत्पादन और मखाना की खरीद बिक्री और एक्सपोर्ट में बिहार जल्द से जल्द अव्वल नंबर पे पहुंचे, इसकी परिकल्पना हम लोग करते हैं। और उस उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह की सुविधाएं ताकि किसान से लेकर जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे उन सबको मिल सके, उसके ऊपर भी हम लोग एक चेन फैसिलिटी बनाने का काम कर रहे हैं। रेडिएशन सेंटर अभी बिहार में एक है, और भी रेडिएशन सेंटर हम लोग बिहार के अलग अलग कोने में भी खोल सके, जिससे कि इस एक्सपोर्ट फैसिलिटी को और ज्यादा सुगम बना।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। लोक भवन ने राज्य के 14 विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई निर्धारित है। लोक भवन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में हीट वेव जैसी स्थिति बनी हुई है। पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और बक्सर सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है।
24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
प्रदेश में 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन और बालू उठाव पर रोक लगा दी गई है। खान और भूतत्व विभाग ने कहा है कि आगामी मानसून के दौरान नदियों के जलस्तर में संभावित वृद्धि के मद्देनजर ये प्रतिबंध लगाया गया है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान सभी बालू घाटों पर खनन गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। राज्य सरकार ने सभी जिलों में बालू की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक बनाने का निर्देश भी दिया है। निगरानी विभाग ने पूर्णिया के नगर प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी रूपक कुमार को 10,000 रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी पर जमीन के दाखिल खारिज की प्रक्रिया के लिए राशि की मांग करने का आरोप है। मुंगेर की एक अदालत ने न्यायालय के आदेश की अनदेखी करने के मामले में मुफस्सिल थाना प्रभारी विपिन कुमार सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। वर्ष 2010 के इस मामले में मुख्य अभियुक्त की मृत्यु संबंधी रिपोर्ट नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है। बिहार संग्रहालय की ओर से पटना में आज से 7 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को टेराकोटा कला, मुखौटा निर्माण कला तथा कहानी लेखन कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंप का उद्घाटन महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह करेंगे। अररिया जिले के प्रभारी सचिव मोहम्मद सुहेल ने संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निष्पादन पर संतोष व्यक्त किया है। वहीं जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने एक महिला के साथ उत्पीड़न मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी जिले के फुलहर से प्राप्त अभिलेख युक्त बौद्ध देवी तारा की प्रतिमा और पुरावशेष को मिथिला ललित संग्रहालय को सुपुर्द कर दिया गया है। गोवा में संपन्न राष्ट्रीय महिला मास्टर्स एथलेटिक प्रतियोगिता में भोजपुर की अंजू कुमारी ने 3 स्वर्ण पदक जीता। अंजू ने 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ और रिले स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया है। पटना में 6 से 10 जून तक बिहार राज्य सब जूनियर फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन साइट फिर ठप हुई, परेशान रहे विद्यार्थी। दैनिक जागरण लिखता है, करोड़ों की सरकारी दवाओं पर नकली रैपर लगा, बांग्लादेश में तस्करी। दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार और गया समेत कई जिलों के अस्पतालों से आती थी दवाएं। दैनिक भास्कर ने बिहार में काली कमाई से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, काली कमाई से बिहार के अफसरों की प्रॉपर्टी खरीद का खुलासा, मामाजी के जरिए बागडोगरा पहुंच रहा है बिहार के अफसरों का कैश। प्रभात खबर जेई एडवांस परीक्षा परिणाम से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखता है, गुवाहाटी जोन के सफल छात्रों में 45% बिहार के। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर प्रदेश के नगर निकायों में भी आज हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। राज्य के प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मी होने पर नहीं कराना होगा निबंधन। राज्य सरकार ने बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्त अधिनियम समाप्त किया। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में उमस भरी गर्मी का दौर जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।